तो यहां से अब आगे नबी अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट बात हो रही है, अब काफिरों से नहीं बात हो रही। अब अगली आयत आप देखेंगे, आयत नंबर 25 तक, 26 तक यही बात है। हल अता का हदीसु मूसा, क्या आई आपके पास मूसा अलैहिस्सलाम की बात, खबर, मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान में सबसे ज्यादा दफा आया। 500 से जायद आयात में मूसा अलैहिस्सलाम के हालात बयान किए गए हैं, तकरीबन 28 पारों में, हर एक में। और इनके हालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात से बहुत मिलते जुलते थे, तो इसलिए इनकी जिंदगी से आपको तसल्ली दी गई। इद नादाहु रब्बुहु बिल वादिल मुकद्दसी तुआ, जब उसको उसके रब ने पुकारा उस वादी मुकद्दस में जिसका नाम तुआ है, इसी वादी के पास ही तूर पहाड़ था जहां पे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। तो अल्लाह ताला ने उस वादी का नाम यहाँ पे लिया है कि इस वादी में आपको मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा गया। और आपको पता है, हम ये किस्सा बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने गए, या कोई मुझे हिदायत का पैगाम वहाँ से मिल जाए, रास्ता का पता मिल जाए, तो वो गए थे अपने घर वालों को बिठा के, और वहाँ पे अल्लाह ताला ने उनसे कलाम फरमाया और उनसे उनको नबुवत अता फरमाई, उनको फरमाया इधब इला फिरऊना इन्नहु तौगा, जाइए आप फिरौन के पास, बेशक वो सरकश हो चुका है। जैसे पहले भी बात हुई तागी होने की, और तुगयानी क्या है, सरकशी, हद से निकल जाना। हद से निकलना यानी अल्लाह ताला के अहकामात को तोड़ना और उसके ऊपर कोई फिक्र भी ना होना, ये तुगयानी है। ये नहीं कि उसके बाद इंसान तौबा कर ले, गिड़गिड़ाए, रोए कि हाय मुझसे गलत हो गया, बल्कि इंसान उसके ऊपर डटा रहे और बेहिसी के साथ वो करता रहे। तो यानी दरिया में भी आ जाए ना, तो पानी बाहर आ जाता और तबाही आ जाती है। इंसान में भी जब तुगयानी आती है तो तबाही आ जाती है उसकी, जब वो हदें क्रॉस करने लगता है। अल्लाह ताला ने उसको हदूद में बांधा है, ये हद है तुम्हारी, इससे आगे नहीं जाना, ये हराम की फिर बाउंड्रीज हैं जो क्रॉस हो जाएंगी, आगे हराम है, तुम अंदर रहो, हलाल के अंदर रहो। जब इंसान अल्लाह का हुक्म तोड़ देता है तो वो बाउंड्री क्रॉस कर देता है। जिसने थोड़ा तोड़ा वो छोटा तागी है, जिसने ज्यादा तोड़ा वो बड़ा तागी है। फिरौन ने तो अपने आप को ही खुदा कह दिया था, इसलिए वो सबसे ही बड़ा तागी हो गया। यानी हद तोड़ के भी, नाफरमानी करके भी कोई फिक्र नहीं, बल्कि खुश हैं। डोंट केयर वाला एटीट्यूड। तो मूसा अलैहिस्सलाम को क्या करने के लिए भेजा गया कि जाएं आप उसके पास जाएं, वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर गया। और कुरैश के साथ भी यही तो हुआ था। कुरैश का भी सिर्फ ये जुर्म नहीं था कि वो आखरत पर ईमान नहीं लाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे, बल्कि वह सरकश हो चुके थे। वो नहीं चाहते थे हमें कोई बताए कि ये तुम्हारी लिमिट्स हैं, तुमको इनमें रहना है। वो नहीं चाहते थे कोई ये कहे कि हद में रहो। हाँ, कोई भी हमारी हद नहीं, हम जो जो मर्जी करें, हमें ना लिमिट्स में रहने को, हम इतनी बड़ी चीज है, हमें कौन बताएगा ये करो और ये ना करो, कौन होता है हमें बताने वाला। इसीलिए तो वो रसूल को नहीं मानते थे, वो फ्री लाइफस्टाइल चाहते थे, डूज एंड डोंट्स वाला नहीं, ऐसा लाइफस्टाइल चाहते थे जिसमें वो अपनी मर्जियां चला सके और कोई रोकने टोकने वाला ना हो। फिरौन का भी यही हाल था। इसका मतलब है, ये जरूरी नहीं है कि कोई कहे अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं, या किसी का नाम फिरौन हो या कोई बादशाह ही हो, तो फिर ही वो तागी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो भी ये कहता है मैं आजाद हूं, नोट करें इसको, मैं आजाद हूं, मुझे किसी की तरफ से ये नहीं पसंद है कि कोई मुझे बताए कि क्या करना है, मैंने अल्लाह ताला भी ना बताया, ये इस्लाम, ये दीन और ये वाली बातें ना मुझे बताओ, मेरा जो जी चाहे मैं करूं, जो दिल करेगा करूंगी, नहीं दिल करेगा नहीं करूंगी। और मैं नहीं पाबंद जिंदगी गुजार सकती, मुझे पाबंदियां पसंद ही नहीं है। मैं फ्री सोलू, मैं फ्री लाइफ गुजारूंगी। रिस्ट्रिक्शंस ना मेरे ऊपर लगाओ, मुझे डिक्टेट ना कराओ कि दीन इससे मना करता है और ये कहता है और ये करने को कहता है। अपना दीन अपने पास रखो। ये क्या है, ये सारे डायलॉग्स किसके होते हैं, जो तागी होता है। और तागीन का अंजाम देख लिया ना आपने, इन्ना जहन्नम कैनत मिरसादा लितौगीन मआबा। जहन्नुम घात में लगा बैठी है इन्हीं तागियों के लिए, ऐसे सरकशों का ठिकाना जहन्नुम है सिर्फ। तो जब हम फिरौन का किस्सा पढ़ते हैं, हम सोचते हैं वो एक फिरौन था, वो गुजर गया बस, अब हमें क्या लेना देना। जरा अपने अंदर झांक के देखें, कहीं मेरे अंदर भी एक छोटा फिरौन तो नहीं बैठा हुआ, जो अपनी मनमानियां करना चाहता है, अपनी मर्जियां करना चाहता है और किसी की मानना नहीं चाहता, चाहे वो अल्लाह की किताब हो, चाहे वो हदीस हो, चाहे अल्लाह का कोई हुक्म सामने आ जाए। मेरी मर्जी के खिलाफ है तो मैं नहीं मानूंगी। सबसे पहले जो इंसान अपनी मर्जी को देखता है, वो अल्लाह का इबादत करने वाला नहीं है, वो अपने नफ्स की इबादत करने वाला है। फकुल, बस कह दीजिए उसको जाके, हल्ल का इला अंतजक्का, क्या तेरे लिए है क्या इस बात की कि तू पाकीजगी इख्तियार करे, यानी क्या तेरे अंदर कोई जरा सी भी सोच है, इंक्लिनेशन है, कहीं ख्याल है, कहीं कोई फिक्र है, या कोई कोई जरा सा भी कोई इस चीज की तरफ तुम्हारा ध्यान हो कि मेरा तस्किया हो जाए। तस्किया क्या चीज होती है? तस्किया ये होता है कि किसी कोई अपने अंदर से बुराइयां निकाल ले और नेकी के बीज डाले। इसको एक बागबान से समझें, एक माली किसी बाग में जाता है तो वो क्या करता है, जो फजूल बेकार जड़ी बूटियां होती हैं उनको निकाल देता है और नए पौधे फूल उनके बीज डालता है। यही तज़किया का अमल इंसान अपने नफ्स पे भी करता है कि इंसान गुनाहों से अपने आप को पाक करे और नेकियों के बीज डाले। जैसे शुरू की सूरत का शुरू जो है इसके साथ अटैच हो गया इस तरह से, वह नाज़ियात ग़र्क़ा, मैंने आपको बताया, गुनाहों से पहले अपने आप को खींच के निकालना, फिर वह नाशिता नश्ता, फिर अपने अंदर नेकी के बीज डालना, नेकी के रास्ते पे चलना, ये तज़किया है। ये नहीं कि बुराइयां भी साथ साथ चल रही हैं, साथ साथ कहीं नेकी भी हो जाती है, फिर इधर भी आधे तीतर आधे बटेर, ये नहीं है कोई सोल्यूशन। निकालें गंदगियों को, निकालें गुनाहों को, नाफरमानियों से जान छुड़ाएं। अब इंसान सोचता है कोई बात नहीं, नेकी भी तो कर ही रहा हूं ना, साथ साथ गुनाह भी चलते जा रहे हैं। तो ये प्योरिफिकेशन का अमल नहीं है, प्योरिफिकेशन के लिए अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ना होगा, अपनी सरकशी को छोड़ना होगा, जुल्म को छोड़ना होगा। वह अहदी का इला रब्बी का फतख्शा, और मैं रहनुमाई करूं तुम्हारी, तुम्हारे रब की तरफ, ताकि तुम डर जाओ। अब देखें, ये चीज भी मूसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ ये नहीं कहा गया कि जाओ फिरौन के पास, ये भी बताया गया आपने जाके कहना क्या है। फकुल, आप उससे कहें, अगर तुझे ख्वाहिश है तो मैं तेरी रहनुमाई करता हूं तेरे रब की तरफ, ताकि तू डर जाए, ये उसको कहे। अब देखें, जिस इंसान के अंदर कोई जरा सा भी ख्याल हो ना कि मैं बेहतर बनना चाहता हूं और ये मैं इनसे निजात पाना चाहता हूं जो गुनाह है, फिर तो उसकी कोई इसलाह हो सकती है। लेकिन जिसमें कभी ये सोच ही ना हो, जिसके अंदर कोई ख्याल ही कभी ना उठाओ, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? अब यहां पे कहा इला रब्बी कल आला, नहीं कहा, हालांकि अल्लाह ताला तो अल आला है, लेकिन इसलिए नहीं कहा गया कि फिरौन खुद को समझता था, आगे आ रहा है ना, फिरौन खुद को समझता था कि अना रब्बुकुम अल-आला। तो यहां पे नहीं कहा गया हिकमत के साथ बात की गई है ना, अगर शुरू से ही कह दिया जाएगा तो फिर वो वहीं से भाग जाएगा। लेकिन फिरौन अच्छी तरह समझता था रब होने का मतलब क्या है। चलो मैं तेरी रहनुमाई करूं तेरे रब की तरफ, यानी तू तो रब नहीं है फिर, कोई और रब है। और फिर सवालिया अंदाज यहां पे अपनाया गया, ये तुम्हें कोई ख्याल अगर हो, तुम चाहते हो भला भला बनना, अपनी इम्प्रूवमेंट करना, अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की तुम्हारे अंदर कोई ख्वाहिश है, तो फिर आओ मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूं, मैं तुम्हें हिदायत का रास्ता दिखाऊं अल्लाह की तरफ जो जाता है, ताकि तू डर जाए। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था फिरौन की तरफ, तो अल्लाह ताला ने ये भी इंस्ट्रक्शन दी थी मूसा अलैहिस्सलाम को कि आपने जब जाना है तो आपने उसके साथ नर्म बात करनी है, आपने उसके साथ ऐसी, यानी फिरौन है वो, कोई आम आदमी नहीं है फिरौन है, फिर भी फकूला लहू कौलन लय्यिनन, सूरह ताहा में है ना, उसके साथ नर्म बात कीजिए, क्योंकि दावत देने के लिए बहुत जरूरी है कि इंसान नरमी से दे। अगर आप सख्ती का रवैया पहले दिन ही से शुरू कर देते हैं, चाहे वो बच्चों के साथ हो, बड़ों के साथ हो, किसी के साथ भी हो, उसको ताने देना, तुम क्या बनी हुई हो, तुम क्या पहन रही हो, तुम तो कभी, तुम्हें नमाज का ही ख्याल नहीं, तुम तो ऐसी हो, तो फिर देखिए आप दूसरे को दूर कर देंगे, बदजन कर देंगे। तो लय्यन कौल के साथ, नरम कौल के साथ, इसी से हमें पता चलता है, ये बात समझ आती है कि अगर अल्लाह ताला मूसा अलैहि सलाम को ये फरमा रहा है कि फिरौन के पास भी जाएं तो कौल लय्यन करें, तो सोचें हम जिनके साथ बात करते हैं वो तो फिरौन से बढ़ के तो नहीं है, या फिरौन तो नहीं है, फिर हम उनके साथ क्यों सख्ती से बात करें। अगर फिरौन के साथ नरमी का हुक्म है तो जिनके साथ हम बात करते हैं फिरौन से तो बहुत कम है ना। और अल्लाह ताला ने अगर मूसा अलैहि सलाम को इंस्ट्रक्शन दी है कि आप नरम रवैया इस्तेमाल करें, तो खुद सोचें हम मूसा अलैहि सलाम से बढ़ के तो नहीं है कि मूसा अलैहि सलाम तो नरमी करें और हम सख्ती कर सकते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए जब हम दीन की दावत देने खड़े हों, चाहे हम अपने बच्चों को दे रहे हैं चाहे हम बड़ों को दे रहे हैं। तानों से बात शुरू ना करें, आपने बच्चे को नमाज के लिए आवाज देनी है तो ये इस तरह से कह के ना शुरू करें बात को, तुम्हें तो नमाज की फिक्र ही नहीं, कभी फिक्र होती है, कभी खुद भी नमाज के लिए आ जाया करो, कभी तुम्हें ख्याल आता है। यानी तानों के साथ अगर आप बात करेंगे तो फिर वो बात गो थ्रू नहीं होगी। नरमी से बात कीजिए, हिकमत के साथ बात कीजिए, और इन दो आयात में हिकमत ही पता चलती है। मैं आओ तुम्हें तुम्हारी रहनुमाई करता हूँ, मूसा अलैहि सलाम ने ये भी नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारा बॉस हूं और अब से ये है तुम मेरी बस सुनो, नहीं, आओ मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं, आओ मैं तुम्हें बताऊं और वो रास्ता जो रब की तरफ लेकर जाने वाला है, फतख्शा, ताकि तू डर जाए। खशियत कौन सी खौफ होता है, जो किसी की अजमत की वजह से हो। जब आपको पता चल जाता है ना कि कौन कितना अजीम है, तो उसके बाद एक डर, एक जिसको कहते हैं उसकी एक दिल के अंदर एक रोब उसका आ जाता है, एक दिल में डर आ जाता है उसका, वो डर खशियत कहलाता है। इससे हमें पता चला कि जो सच्चा इल्म है ना, हिदायत का रास्ता की रहनुमाई करना, यानी मैं तुम्हें वो इल्म देता हूँ जिससे तुम हिदायत का रास्ता पालोगे और तुम्हारे अंदर खौफे खुदा पैदा होगा, तो इसका मतलब सच्चा इल्म वो होता है जिससे अल्लाह की खशियत पैदा हो। ठीक है, फतख्शा खशियत इल्म के साथ होती है, वो डर जो इल्म के साथ है जिसमें मार्फत है। तो अगर आप बगैर इल्म के डरते हैं तो फिर वो डर शायद फायदा मंद ना हो, वो शायद डिप्रेशन ही लेकर आए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना आप किसके साथ मामला कर रहे हैं। तो डर भी वो हो जो इल्म के साथ हो। और ये भी हमें पता चलता है कि जो हम इल्म हासिल कर रहे हैं इसका एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए, फतख्शा, कि हमारे अंदर डर पैदा हो जाए, अल्लाह ताला की खशियत पैदा हो जाए। ये ज़रूर इसका एंड रिजल्ट होना चाहिए। अगर ये नहीं पैदा होती तो इसका मतलब है कि फिर हम कुछ सही नहीं कर रहे। हमारा इल्म लेने का एक मकसद ये भी होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की खशियत होगी तो फिर ही हम नेकी के कामों में दौड़ेंगे, और हमें गुनाह करते हुए डर लगेगा कि आए उस रब को नाराज करते हैं जिस जो इतना अजमत वाला है। और जिंदगी का मकसद ही इंसान का ये है कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सके, अल्लाह ताला के करीब हो सके। ये जो बाकी काम है वो जरूरियात हैं, वो लेकर इंसान चलता है सिर्फ इसलिए ताकि ये जिंदगी वो गुजार सके। जैसे इंसान के लिए खाना है, पीना है, सांस लेना है, ये सब जरूरियात हैं। इसी तरह उसका रहना, उसके मामलात, ये सब जरूरियात है, लेकिन मकसद नहीं है। तो जब मारफते रब दिल में आती है, अल्लाह ताला की पहचान आती है, तो फिर इंसान तलाश करता है कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। इस ऐसे रब ने मुझे किसी मकसद से ही तो पैदा किया है, मैं अपनी जिंदगी का मकसद पहचानूं। फअराहुल आयतल कुबरा, फिर दिखाई उसको बड़ी निशानी। बड़ी निशानी से बाज ने मुराद लिया आसा का सांप बन जाना, अजदहा बन जाना, ये बड़ी निशानी थी जो मूसा अलैहिस्सलाम ने दिखाई थी। फकद्दब व आसा, तो उसने झुटलाया और नाफरमानी की, उसने नहीं माना। और मैंने आपको बताया था झुटलाना सिर्फ ये नहीं होता कि मैं नहीं मानता, बल्कि झुटलाना ये भी होता है कि इससे आगे बढ़ के प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाए, लोगों को भी उकसाया जाए कि तुम भी ना मानना, देखो देखो ये बात तुम ना इसको सच ना समझ लेना। आज बाज़ लोग फिरौन के तरीके पे ही चल रहे हैं कि जो खुद भी हदीस का इनकार करते हैं और लोगों को भी इस तरह से एजुकेट कर रहे हैं कि तुम भी हदीस का इनकार कर दो। तकजीब दिल से भी होती है और जुबान से भी होती है। तो झुटलाया उसने और उसने नाफरमानी की। तुम अदबारा यस आ, फिर उसने पीठ फेरी दौड़ते हुए। अब दौड़ा किस लिए कि मैं अब कुछ करूं ऐसा कि जो मूसा अलैहिस्सलाम की बात है वो तो लोग उसके कायल हो रहे हैं, लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं, ये ना हो मेरी हुकूमत ही मेरे हाथ से चली जाए। तो वो दौड़ा कि मैं अब जाके कुछ तदबीर करूं। फहा शराफा नादा, फिर उसने इकट्ठा किया लोगों को, फिर पुकारा। क्या पुकारा? यानी एक ऑफिशियल एड्रेस किया लोगों को, ये लोग मूसा अलैहिस्सलाम के हम ख्याल ना हो जाएं, ये ना हो। उसको थ्रेट फील हुआ ना अपनी हुकूमत के जाने का, तो उस इसलिए उसने लोगों को जमा किया और ऐलान किया। फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तुम्हारा रब्बे आला हूँ, देखो ये मैं हूँ तुम्हारा रब, मैं ही सुपर पावर हूँ। फिरौन को ये तो पता था कि मैंने ये सब पैदा नहीं किया, वो ये नहीं कहता था कि मैंने आसमान जमीन पैदा किए, मगर वो ये जरूर कहता था कि मेरे हाथ में है तुम्हारा फायदा नुकसान, मैं ही ये चलाता हूँ सब कुछ, मैं ही तुम्हारा मुहसिन हूँ, लिहाजा तुम मेरे शुक्र गुजार हो, मेरी ताजीम करो, मुझे सजदा करो, मेरे हुक्मों को मानो, मेरी इताअत करो। ठीक है, इसको वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा रब हूं, ये तुमसे मतलूब है। तो अल्लाह ताला ने उसकी इस बात की वजह से फरमाया फअखज़हुल्लाहु नकाल आखिरा, तो पकड़ लिया उसको अल्लाह ने आखरत की सजा में और दुनिया की भी। उसने ये कहा, वो लोगों को जबरदस्ती इस चीज के ऊपर ला रहा था। उसको ये हो गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम मेरी पावर ना मुझसे ले लें, वो अपनी पावर दिखाने के लिए ये ऐलान करता है मैं हूं तुम्हारे रब्बे आला, जबकि लोग तो देख चुके थे कि फिरौन इस इन इनके मोजजात के आगे तो बेबस है, और फिरौन को अपने दिल में भी मालूम था। मगर बाज दफा इंसान की यही हकूमतें, यही दुनिया, यही इसकी चकाचौंध, यही मालो दौलत, यही चीजें हैं जो इंसान को हक से रोक देती हैं, और इसी वजह से नहीं वो उसने माना। तो अल्लाह ताला ने उसको पकड़ लिया। अब ये जो नकाल है ना, नकाल का एक माना ये भी है, वो जो एक तौक सा, तौक तो गले में पहनते हैं, लेकिन एक एक यानी तौक की तरह की चीज़ होती है जो एंकल में तखने में पहने होते हैं, और उसका दूसरा सिरा जो होता है चेन के साथ होता है, और वो चेन दीवार के साथ लगी होती, मुजरिमों को ये पहनाए जाते हैं। तो हमने उसको आखरत की नकाल में पकड़ लिया, आखरत में भी वो सजा पाएगा और दुनिया में भी। और दुनिया की सजा उसकी क्या थी? उसकी दुनिया की सजा ये कि अल्लाह ताला ने उसको डबो दिया, और आखरत में तो जो बदतरीन अजाब होगा, जो उसका शुरू हो चुका है, अभी भी वो आग में जल रहा है दिन और रात। तो कुरैश के लिए भी ये वार्निंग है कि देखो अल्लाह ताला ने फिरौन को इबरत का निशान बना दिया, देखो फिरौन को अल्लाह ताला ने कैसे सजा दी। इन्ना फी ज़ालिका लइबरतन लिमन यख्शा, ये इसमें, इस किस्से में इबरत है मगर डरने वालों के लिए, जिसमें खशियत हो, जो जानता है अल्लाह ताला को, जो समझता है कि अल्लाह ताला की अजमत क्या है। तो अल्लाह ताला ने इसमें इबरत रखी है। इबरा का मतलब एक तो ये होता है, अबरातिल आइन कहते थे कि आंसू आंख से निकल के बह पड़े, आंसू का निकलना, और आबरा नहर कहते थे नहर को क्रॉस करना। तो यानी इसके अंदर इबरत तो हम बोल तो देते हैं क्योंकि हमारी जुबान में भी ये लफ्ज़ बोला जाता है, लेकिन इसमें क्या है, एक तो ये कि ये ऐसा किस्सा है जिससे आंख से आंसू बह पड़े, क्योंकि इंसान इससे सबक ले कि देखो अल्लाह ताला की पकड़ कैसी है। दूसरा, नहर के क्रॉस करने से क्रॉस करना माना, तो यानी वो क्रॉस कर लिया, कुफर से ईमान की तरफ आ जाए। तो लेकिन जिसको डर होगा, हाँ, जो समझता है कि मुझे डरने की क्या जरूरत है, मैं तो खुद इतना बड़ा हूं, इतना ताकतवर हूं, और तो पुरानी बातें हो गई जी, अब तो हमारे पास ये टेक्नोलॉजी और ये है, और कोई मेरा बाल बीका नहीं कर सकता, मुझे किसी की परवाह नहीं है, फिर वो क्या कहे? उसके लिए तो फिर कोई डर नहीं, उसके लिए ऐसे किस्सों में भी कोई इबरत नहीं, उसको तो कुछ समझ नहीं आते, वो पढ़ता है और फिर उसकी एरोगेंस खत्म नहीं होती। अंतुम अशद्दु खल्कन अम सम बनाहा, फिर बताया अल्लाह ताला ने कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हें खड़ा नहीं किया जा सकता, अल्लाह ताला के पास नऊजु बिल्लाह का कुदरत नहीं है खोखली हड्डियों को दोबारा जिंदा करने की, ये बताओ तो तुम ज्यादा मुश्किल हो बनाने या फिर आसमान? आसमान सीन मीम वाओ से असमा है, और असमा के अंदर हर वो चीज जो बुलंद है वो इसके अंदर है, चाहे वो सूरज है, चाहे चांद है, चाहे जितने भी प्लैनेट्स हैं, सितारे हैं, जो भी कुछ ऊपर है ना, वो सब इसमें है। ये सब कुछ अल्लाह ताला ने बना दिया, तुम्हारा बनाना ही मुश्किल है। यानी लॉजिकल प्रूफ से इसको साबित किया गया कि तुम कैसे मुश्किल समझते हो। राफा समका फसवाहा, उसने उठाया इस आसमान को बुलंदी पे, फिर दुरुस्त कर दिया इसको, इसीलिए कोई झोल नहीं है। और समक का मतलब छत भी होता है, ये ऐसी छत है जो प्रोटेक्शन देती है, छत प्रोटेक्शन के लिए होता है ना। वाकई अल्लाह ताला ने ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए यहाँ पे, अब साइंस बताती है कि बाहर की कई चीज़ें हैं जो कि हमारे इस यानी ज़मीन के इर्द गिर्द जो एक लेयर है उसके अंदर से एंटर नहीं हो पाती, उससे पहले ही ख़त्म हो जाती। अल्लाह ताला ने ये एक छत महफूज बना दी, इसको दुरुस्त कर दिया। ये सारी आसमान की जो छत है, इसको कैसा बनाया, जो सूरह मुल्क में हम पढ़ चुके हैं कि ना कोई शगाफ, ना इसमें कोई रखना, अपनी नजर उठा के देखो ऐसे ही खड़ा हुआ, कितना बैलेंस्ड है, ऊंच नीच भी नहीं है। आप छत डालते हैं ना, बहुत बड़ी छत हो तो पिलर चाहिए होता है, पिलर नहीं डाले तो झोल आ जाता है उसमें, इसमें कोई झोल नहीं। वह अख्तश लैलहा व अखरज दुहाहा, उसने ढांप दिया, अख्तशा यानी ऐसे के बिल्कुल अंधेरा कर देना, बिल्कुल अंधेरा, गुप कर दिया, रात को ऐसी बना दिया, ये अंधेर ही है, और दिन को निकाला। फिर अखराज दोहा का मतलब निकाल दिया उसने दोहा का वक्त। अच्छा आप देखें यहां पे दोहा का वक्त लफ्ज आया, नहार का नहीं आया, बाकी जगहों पे कई जगहों पे नहार का भी आया, दिन, यहाँ पे दोहा आया। दोहा का वक्त तो 9-10 बजे का वक्त होता है जब पूरा दिन रोशन हो। तो क्यों कहा गया दोहा? इसलिए कि रात बिल्कुल तारीक, अगताशा कहा गया। तगातुश कहते हैं अंधा होने को भी, जानबूझ के अंधा होना। तो इतना यानी कि बिल्कुल ब्लैकआउट, जब ब्लैकआउट की बात की गई तो साथ दोहा की, दोहा बिल्कुल रोशन, टाइम का दिन का सबसे रोशन वक्त यही है दोहा का। उसके बाद तो जोहर का वक्त आने लगता है, जवाल की तरफ जाने लगता है सूरज। तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इतनी पिच डार्क भी रात को बना दिया और इतना रोशन दिन को बना दिया। असल में इशारा है कुफर के, जहालत के, जो अंधेरों का है, कि वो पहले इसमें भटके हुए थे, जो लोग इसमें पहले भटके हुए थे अल्लाह ताला ने उनको अब दिन दिखा दिया, वही भेज के सब कुछ क्लियर हो गया। क्योंकि दुहा के वक्त कोई अंधेरा नहीं और दिन भी पूरा रोशन है। तुम्हारे लिए निकाला दिन को, यानी अल्लाह ताला की ये इंतजामात हैं। वो अल अर्द बाद ज़ालिका तहाहा, और उसने बिछा दिया जमीन को, फैला के बिछा दिया, स्मूथ बिछा दिया जमीन के को भी तुम्हारे लिए, इस तरह से कर दिया कि जैसे तुम उसके ऊपर अपनी तमाम जरूरियात को बआसानी पूरा कर सकते हो और अपनी जिंदगी बहुत आराम से काट सकते हो। अखराज मिनहा, इसी से, अखराज मिनहा की जमीर अर्द की तरफ जा रही, इसी से निकाला तुम्हारे उस चीज को जो सबसे बड़ी जरूरत है इंसान की, पानी। पानी भी इसी जमीन से निकाला, व मरआहा, और उसका चारा भी, यानी इंसान के मवेशियों के लिए चारा। और फिर आप देखें उस वक्त तो मवेशी थे, आज क्या है? आज तो गाड़ियां, सफारियों के लिए हमें मवेशियों की जरूरत नहीं है, जहाज हैं, ट्रेन हैं, गाड़ियां हैं, उनके लिए चारा निकाला, वाकई निकाला इस जमीन से। यही कुरान का ये एजाज है कि ये हर जमाने के लिए, आप देखें उनके लिए भी तेल इस जमीन से ही निकलता है। वल जिबाल अरसाहा, और उसने पहाड़ों को गाड़ दिया, मता लकुम वली अनआमिकुम, तुम्हारे लिए भी ये मता है तुम्हारे जानवरों के लिए, फायदे की चीज, मता कहते हैं फायदे की चीज को, तुम्हारे लिए भी और उनके लिए भी। अब देखें ये जो मता है, इसका एक तो माना फायदे की चीज हो गया, असल इसको अरब लोग की किस तरह से इस्तेमाल करते थे वो देखने की जरूरत है। और इसके लिए राग़िब इस्फ़हानी, उन्होंने इस लफ्ज को जानने के लिए ट्रैवल किया, एक बस्ती से दूसरी में जाते थे कि देखें कि ये लोग कैसे इस लफ्ज को बोलते हैं, इनकी लुगत में किस तरह इस्तेमाल होता है। चलते चलते ना वो एक जगह पहुंचे जहाँ पे नदी थी, वो उसके किनारे बैठ गए और कुछ सोचने लगे। देखा वहां पे एक लड़की आई जिसके पास कुछ बर्तन थे, उसने एक ब्रश लिया हुआ था, उस ब्रश से उन बर्तनों को मांज रही थी। जब उसने ब्रश रखा तो एक बकरी आई और उसका ब्रश उठा के लेके भाग गई। वो पीछे चीखते हुए भागी, अखदा मताई, अखदा मताई, इसने मेरा मता ले लिया, इसने मेरा मता ले लिया। तब उनको समझ आया कि मता का मतलब होता है टूल, जिससे इंसान अपनी जरूरत पूरी कर सके, यानी जिस जो जरूरत पूरी करने का सामान है, जैसे फायदे का इस सामान इसका तर्जुमा लिखा जाता है ना, यानी जो इंसान की जरूरत की चीजें उसका सामान। तो यानी जो भी अल्लाह ताला ने दिया है वो तुम्हारे लिए और तुम्हारे जानवरों के लिए वो फायदे का बना दिया, यानी जरूरत का सामान बना दिया, यानी ऐसी चीज बना दी जो टूल बनाया कि उससे के जरिए आप इस जिंदगी को गुजार सको। इससे हमें पता चला कि ये टूल है, इंजॉयमेंट के लिए नहीं है। इससे हमें ये पता चला ये टूल किस चीज़ के लिए है, किस चीज़ के लिए ये टूल है, कि अल्लाह ताला का कुर्ब इसके ज़रिए हासिल करें, अल्लाह के करीब हो इन चीज़ों को इस्तेमाल करके। अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास मता क्या है, मसलन हमारी गाड़ी है, मसलन हमारे घर हैं, मसलन हमारे पास और चीज़ें हैं, वो मता है, लेकिन ये तब सही तरह इस्तेमाल होगा जब ये अल्लाह से करीब होने के लिए इस्तेमाल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरी दुनिया मता है, सारी दुनिया, यानी इसमें सारी दुनिया में वो टूल्स हैं जो अल्लाह ताला तक पहुंचाते हैं इनको, यानी अल्लाह के रास्ते में अगर यूज़ करें तो ये अल्लाह ताला के करीब लेके जाते हैं। और बेहतरीन मता नेक बीवी है। क्या मतलब कि आदमी शादी करने लगे तो ये सोच के करे कि कौन है जो नेक औरत है, ना कि सिर्फ शक्लें देखें। तो वो टूल है उसको अल्लाह तक पहुंचाने का, कि उसके जरिए वो अल्लाह ताला तक पहुंच सकता है। कैसे कि मियाँ बीवी मिल के अल्लाह ताला की इबादत करें, दोनों एक दूसरे को याद दहानी कराएं, और वो इसकी वजह से वो गुनाहों से बच जाए। तो यानी ये सब चीज़ें हमें हमारे लिए टूल्स ऐसे हैं, जैसे समझ लें आप कि आपको एक घर बनाने को दिया जाए और उसके लिए आपको हथौड़ी और कील और लकड़ी और ये सब दे दी जाए। अब आप उनको सीने से लगा के बैठ गए, घर बना नहीं रहे, और आपने हथौड़ी पकड़ी भी है और आपने कील पकड़े में, और उनको ही बस सब कुछ समझ लिया और उनसे मोहब्बत करने लगे। तो दुनिया की सारी चीज़ें जो है ना, ये इसी तरह हैं। इनसे तो आपने आखरत का घर बनाना था और आप इन्हीं से चिमट गए, सोचा भी नहीं कि ये तो टूल्स हैं। असल जब घर बनेगा तो वो है असल चीज। इसी को सब कुछ समझ के बैठ गए। फायदा जतमतुल कुबरा, बस जब आ जाएगी तामतुल कुबरा। अब देखिए सोचने की बात है, अता भी आता है, आ जा भी आता है, आता जब आता है तो फिर आने का तो माना होता है, लेकिन कोई बड़ी चीज के आने का माना नहीं होता। लेकिन जा जब आता है तो आने का माना होता है कि बहुत बड़ी चीज के आने की खबर होती है। अब जा सकरातुल मौत, तो सकरातुल मौत बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आया हल अता का हदीसुल गाशिया, आई बात गाशिया की, गाशिया नहीं आई, बात आई गाशिया की, इसलिए अता आया। तो यहाँ पे जाअत से पता चला को बहुत बड़ी चीज है। क्या है वो चीज? तामतुल कुबरा, इस लफ्ज में भी पता चलता तामा, वो जो पूरी तरह फुल हो गई हो। तो यानी ऐसी आफत जो घेर ले, जो बहुत बड़ी हो, जो यानी इंसान को कोई रास्ता ना मिले उससे, इतनी बड़ी वो आफत आ जाएगी। यानी और माजी का सीगा इस्तेमाल किया गया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कयामत के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में माजी का सीगा अक्सर जगहों पर इस्तेमाल फरमाया, और इसकी वजह यही है कि समझ लो आ चुकी, कोई उसके अंदर शक बाकी नहीं है। और फिर एक तमाम का माना है क्रश कर देने वाली, यानी ये वो मुसीबत है जो क्रश कर देगी किसको, हर चीज को, कोई भी चीज बाकी नहीं रहेगी। यौम यतदक्करुल इंसानु मा सआ, जिस दिन इंसान याद करेगा जो उसने कोशिश की, कब से याद करेगा, कयामत के दिन तो याद करेगा ही करेगा, लेकिन जब से मौत का झटका आएगा उसी वक्त उसको सब कुछ याद आ जाएगा, हाय मैंने किया क्या। मगर यहाँ पे यतदक्करु खास तौर पे कयामत के दिन के लिए आया, यतदक्करु यद्दक्करु भी आता है, उसमें ता और दाल मर्ज हो जाते हैं, तो यद्दकर वो क्या, लेकिन यहां पे यतदक्कर वो, आप देखिए मैंने आपको बताया था जितने लेटर ज्यादा होते हैं माने में भी उतनी वुसत हो जाती है, यानी इंसान याद करेगा हर हर बात को, हर हर छोटी छोटी चीजों को भी, माइन्यूट डिटेल्स को भी याद करेगा कि मैं कहाँ मैंने अपने दिन गुजारे, कहाँ रातें गुजारी, किस चीजों के पीछे दौड़ता रहा, किसके पीछे मैंने अपनी कोशिशें लगाई। यौम तज़क्करुल इंसानु मा सआ, कोशिश मेरी कहाँ लग रही थी। दौड़ तो सभी रहे हैं, आप सुबह को देखते होंगे गाड़ियां कितनी रोड्स पे होती हैं, हर कोई किसी तरफ दौड़ रहा है, लेकिन किसकी दौड़ अल्लाह ताला के लिए और किसकी दौड़ बस अपने नफ्स के लिए, किसकी दौड़ दुनिया के लिए और किसकी दौड़ आखरत के लिए। दौड़े सब की हैं, मेरी दौड़ किस तरफ है। और इंसान को अपनी ये दौड़े ही याद आएंगी, जो उसने किया वो तो बाद की बात है, मैं किस तरफ जिंदगी गुजार किया है, मेरा रुख क्या था, उन बातों को याद करेगा। इस पूरी जिंदगी की एक फिल्म चल जाएगी। इसलिए जब इंसान अल्लाह ताला के सामने आएगा ना, तो अल्लाह ताला फरमाएगा कफा भी नफसी कर ओ मालिका हसीब, इंसान तू अपने नफ्स पे पर खुद ही हिसाब लेने के लिए काफी है। कफा भी नफसी कल योम अलैका हसीबा, तू इसके ऊपर तू तेरा हिसाब करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, तू खुद काफी। वलाहु अल्का माजीरा, चाहे वो इतनी माजरतें भी दे, हमने पढ़ा था ना सूरह कयामा में, कितनी माजरतें भी दे उसको खुद पता है। बल इंसान वाला नफसी बसीरा वलो अल्का माजीरा, कितने झूठ घड़ेंगे, कितनी बातें लाएंगे, कितने एक्सक्यूजेस देंगे, इंसान को सब याद आ जाएगा, अपने एफर्ट्स को याद करेगा, माल किधर लगाया था, जिंदगी किधर खपाई थी। तीन पांच बातें ऐसी हैं जिनके बगैर तो कोई जान मैदाने हशर से हिल नहीं सकती, किसी के कदम नहीं हिल सकते। जिंदगी कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ गुजारी, माल कहाँ से कमाया, माल कहाँ खर्च किया, इल्म जो लिया था उस पे अमल कितना किया, इसके बगैर कोई जा ही नहीं सकेगा। ये सब चीज इंसान याद करेगा। इन्ना सायकुम ला शत्ता, अल्लाह ताला ने फरमाया तुम सबकी कोशिशें डिफरेंट डिफरेंट है, हर एक ही अलग कोशिश है, लेकिन अल्लाह ताला ने कोशिश ही तो देखनी है। इन्ना सायकुम सौफ यरा, तुम्हारी कोशिश ही देखी जाएगी। हम दुनिया में क्या देखते हैं, कोशिशें नहीं देखते, हम एंड रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट क्या था, अल्लाह ताला कोशिश देखता। चाहे रिजल्ट में आप उतना नहीं भी पा सके, अल्लाह ताला क्या देखता है। देखिए अब कई पैगंबर आएंगे, उनके साथ किसी के साथ दो, किसी के साथ चार, किसी के साथ इतने उम्मत ही होंगे, बस पूरी जिंदगी। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल के बाद भी 70 लोग इस्लाम लाए, तो पूरी जिंदगी उनकी एफर्ट क्या बेकार गई, क्या उनकी मेहनत जाया हो गई? नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला कोशिश देख रहा है, वो ये नहीं देखता कौन कितने लोग लेकर आया, वो ये नहीं देखता कि कौन कितने नंबर लेकर आया, वो ये देखेगा आपने कोशिश कितनी की। ये कितनी बड़ी बात है और कितनी हमारे लिए हौसला अफजा बात है कि हम कोशिश जारी रखें, नतीजा हमारे हाथ में नहीं है, अगर इसलाफ भी कर रहे हैं किसी की तो कोशिश करते रहें, नतीजे पे नजर ना रखें, क्योंकि अगर हमने कोशिश कर ली तो हम पास ही पास हैं, नतीजा चाहे कुछ भी निकले। तो इंसान याद करेगा अपनी कोशिशों को, अपनी मेहनतों को, काश इंसान ये याद यहां कर ले कि मैं किस तरफ कोशिशें कर रहा हूं, किस तरफ मेरी मेहनतें लग रही हैं। और फिर ये मैदाने माशर में है कि वबुर्रिजतिल जहीमु लिमन यरा, और बराजा कहते हैं जाहिर कर देने को, बुर्रिजत मजबूर, जाहिर कर दी जाएगी जहन्नम लिमन यरा, उसके जो वास्ते उसके जो देखता हूं। इसके बारे में एक कौल तो यही है कि हर कोई जहन्नुम को देखेगा। सूरह मरियम की वो आयत ना, वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तो में से कोई ऐसा नहीं है जो उसके ऊपर वारिद ना हो। और वारिद से बाज ने तो ये माना लिया कि उसमें दाखिल होगा और निकलेगा। बाज ने कहा कि नहीं, पुल से रात के ऊपर से गुजरेगा तो देखेगा तो सही ना, पता तो चलेगा। काफिर तो दाखिल हो ही जाएंगे लेकिन ईमान वाले देखेंगे तो सही, मगर वो पार हो जाएंगे। तो वो भी एक खौफनाक मंजर है जिस वक्त के जहन्नुम को खोल दिया जाएगा। पहले तो जब हशर के मैदान में ही खोली जाएगी, तभी वो आपे से बाहर हो रही होगी और चिल्ला रही होगी, और उसका गजब और गुस्सा होगा इस कदर ज्यादा। उस वक्त ये हाल होगा, सब उसको देखेंगे लेकिन सब ही घुटनों के बल गिर जाएंगे और कहेंगे, नफसी 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 नफसी, अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे बचा ले। तो जाहिर कर दी जाएगी जहन्नुम हर एक के लिए जो भी देखता हो। फअम्मा मन तौगा, लेकिन अभी यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि ठिकाना बना दिया जाएगा, उसमें जाएंगे, बस जाहिर कर दी जाएगी, दिखाई जरूर जाएगी। इवन कब्र में भी जन्नत और जहन्नुम दोनों दिखाए जाएंगे, काफिर को भी मोमिन को भी, बुरे को भी अच्छे को भी। इसलिए कि अगर तुम फासिक फाजिर हो तो तुम्हें पता चल जाए ये तुम्हारा ठिकाना है। और जन्नत किस लिए दिखाई जाए, ताकि तुम्हारी हसरत हो के देखो मैं नेकियां करके यहां पे भी जा सकता था। और अगर नेक है फिर क्यों दिखाई जाएगी, इसलिए ताकि इंसान को पता चले कि अल्लाह तूने मुझे कितनी बड़ी बला से महफूज रखा, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इसमें दाखिल नहीं कर दिया। इंसान एहसान मंद हो, शुक्र गुजार हो अल्लाह ताला का, और उसको एहसास रहे कि अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है मेरे ऊपर कि इस जैसी चीज से मुझे बचा लिया उसने। तो सबको दिखाई जाएगी मगर वो फअम्मा मन तगा, अब तो आपको अच्छी तरह पता चल गया ना तो यानी क्या होती, और छोटा तावी भी होता और बड़ा भी होता। तो जो कोई सरकशी करे वह आथर अल हयात दुनिया, और दुनिया की जिंदगी को आगे रखे, दुनिया की जिंदगी को उसने अपना मतमाए नजर बनाया हुआ है, प्रायोरिटी वो किसको देता है, दुनिया को। मैंने इंसान लेकिन दो चीजों को कभी प्रायोरिटी नहीं दे सकता, कि वो दुनिया के लिए भी कर रहा है और आखिरत के लिए भी हो रहा है। वो दुनिया भी 100% चला रहा है और आखिरत भी उसकी 100% चल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। यकीनन उसको एक को आगे करना पड़ेगा और दूसरे को पीछे, चाहे वो दुनिया को आगे कर ले चाहे आखरत को आगे कर ले। देखिए यहां पे कोई ऐसी चीज नहीं बताई जा रही, यहां पे देखिए इंसान की नफसियात है। जब इंसान सरकशी करने लगता है ना, अल्लाह की हदों को तोड़ने लगता है, तो लाजमी तौर पे फिर वो दुनिया को आगे रखता है और आखरत को पीछे ही रखता है। देखिए ना, कोई भी इंसान फैसला करने लगा मैं ये काम करूं या ना करूं, वो काम हराम है, वो काम अल्लाह ताला ने मना फरमाया, उस काम के ऊपर लानत भेजी गई है, वो काम ऐसा है जो अल्लाह ताला की नाराजगी का है, अल्लाह के हुक्म को तोड़ना होगा उस काम को करना, फिर भी इंसान उसको कर जाता है कि यहाँ पे ये फायदा मुझे मिल रहा है, लोग मुझे अच्छा कहेंगे, मेरी तारीफें होंगी, मेरी शोहरत होगी, मेरा मकाम बनेगा, मेरी एक्सटेंडिंग होगी, मैं ऐसा होऊंगा वैसा होऊंगा, इससे मुझे पैसा मिलेगा। कुछ भी मोटिव्स होते हैं लेकिन वो दुनिया के ही होते हैं। जैसे फिरौन भी तागी था तो किस लिए, हुकूमत के लिए, उसने दुनिया ही तो सामने रखी, मेरी हुकूमत कहीं ना चली जाए। तो ये तुगयानी है जो फिर अमल की शक्ल में कैसे बनती है, कि फिर इंसान दुनिया को प्रायोरिटी देने लगता है और आखरत को कोई पीछे डाल देता है। इसका मतलब है उसको आखरत का पता है। यहां पे ये नहीं कहा गया कि आखरत का मुनकर है, यहां पे ये कहा गया आखरत को पीछे और दुनिया को आगे रखा। जाहिर है जब आप एक चीज को आगे करते हैं, एक चीज पीछे कोई रखी होती है तो किसी को आगे करेंगे ना। यहां से बता दिया गया, जब आथर अल हयात दुनिया कहा गया तो पता चल गया कि कुछ चीज है जो पीछे और वो आखरत ही है, क्योंकि यही जोड़ा है दुनिया और आखरत का, या दुनिया या आखरत। आखरत को किस चीज पे छोड़ा हुआ उसने, सिर्फ तमन्नाओं पे, विशेष के ऊपर, कि बस ऐसा हो जाएगा वहां पे भी मुझे मिल ही जाना है। तो हम देखें हमने किस चीज को मुकद्दम रखा और किसको मुअख्खर किया हुआ है, किस चीज को आगे रखा हुआ है, किस चीज को पीछे रखा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़ी देर की बात होती है, देर की, जरा सा कोई शौक, जरा सा कोई मजा, जरा सी कोई खुशी, जरा सी कोई लज्जत मिलती है जिसके लिए हम दुनिया को आगे कर देते हैं और आखिरत को पीछे कर देते हैं, और सोचते हैं कोई बात नहीं, बाद में तौबा कर लेंगे। कौन कौन सी जगहें ऐसी होती हैं कि आपको आखिरत की परवाह भी नहीं रहती? हम रोज फैसला करते हैं ना कुछ, पहले भी मैंने ये कहा था, रोज फैसला करते हैं। घर से निकलते वक्त हमारा फैसला कहीं ना कहीं हमने प्लानिंग की होती ना, कहाँ जाना है, ऐसे ही तो नहीं मुंह उठा के निकल पड़ते, किधर जाना है हमने। हम जब शीशे के आगे खड़े होते हैं हम फैसला करते हैं ना हमने क्या पहनना है, हम जब बात करने लगते हैं तो फैसला करते हैं ना हमने क्या बोलना है, हम जब दिल में चीजें रखने लगते हैं तो हमें पता होता है ना कि हमने क्या रखना है और क्या निकाल देना है। हर जगह हम कोई फैसला कर रहे हैं। अब ये फैसले में क्या हम दुनिया को पेशे नजर रखते हैं या आखरत को, सवाल ये है। तो जिसने ऐसा किया, फ इन अल जहीम हियल मअवा, तो जहन्नुम उसका ठिकाना है। सरकशी की, और सरकशी आपको पता चल गया, हदों को क्रॉस करना और दुनिया को बस अपना मुतमईन नजर बना लिया, हालांकि दुनिया कितनी छोटी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समंदर में उंगली डुबोई और निकाल लिया, फरमाया जो पानी इस पे लगा रह गया वो दुनिया, और जो ये समंदर है ये आखरत है। इतनी सी जिंदगी है सिर्फ दुनिया, और इतनी सी जिंदगी के अंदर ही हम बस इससे इतनी मोहब्बत करते हैं कि टूटे तो अल्लाह का हुक्म टूट जाए, बस ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो, ये मेरी दुनिया ना मेरे हाथ से जाए, सब कुछ इसी को समझ लिया। जबकि हजरत अली ने फरमाया दुनिया पीठ फेर के जा रही है और आखरत सामने आ रही है, और इनमें से हर एक के बेटे हैं, सो तुम आखरत के बेटे बनो, दुनिया के बेटे ना बनो, यानी आखरत के लिए काम करो। आज अमल है हिसाब नहीं है, कल हिसाब होगा अमल नहीं होगा, ये बुखारी की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया उसका घर है जिसका आखरत में कोई घर नहीं, उसका माल है जिसका आखरत में कोई माल नहीं, यानी वो यहीं पे घर बना के, घर बनाने से मतलब ये नहीं है कि आप अपना घर ही ना बनाए सर पे छत ही ना, यानी इसी को अपना मुस्तकिल ठिकाना समझ लिए। घर वो होता है ना इंसान अपना, ये कहता है यही मेरा ठिकाना है, फिर ऐसे ही लोग होते हैं ना, फिर उनके लिए बन्नाज़ी आते घर का है। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को कंधे से पकड़ के फरमाया दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो या रास्ता अबूर करने वाले की तरह, और इब्ने उमर ये कहते थे कि जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतजार ना करो, जब सुबह करो तो शाम का इंतजार ना करो, यानी जल्दी कर लो नेकियां, अगर तौबा भी करनी है तो जल्दी कर लो, और तुम अपनी सेहत के अय्याम में बीमारी के दिनों के लिए अमल करो, और अपनी जिंदगी में अपनी मौत के लिए कुछ अमल कर लो। जब कोई ऐसा नहीं करता तो फिर जहीम ही उसका ठिकाना है, और जहीम जहम से है, जहम कहते हैं शेर के घूरने को, तो जहन्नम घूर रही है। पहले बताया था ना कि वो इन्ना जहन्नम लबिल मिरसाद, जहन्नम घात लगाए हुए है, घात लगा हुए बैठी है, ऐसी है कि जैसे अपने शिकार को पकड़ने के लिए, बेशक ऐसे घूर रही है, भूखी नजरों से देख रही है कि झपट ले अभी, जो ही जहन्नमी उसकी रीच में आएगा वो फौरन उसको झपटा मार लेगी। तो इनका ठिकाना जहीम है, यहाँ पे जहन्नुम का लफ्ज नहीं आया, जहीम एक और पावरफुल डिस्क्रिप्शन है जहन्नुम की, जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसी है। अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी व नहा नफ्स अनिल हवा, दो बातें वहां कही गई, दो ही बातें यहाँ पे। वो इंसान जो अपने रब के आगे खड़े होने से डरा, यहाँ पे ये नहीं है मन खाफा रब्बी, ये नहीं है, रब की तो खशियत होती है, उसके आगे खड़े होने से डर गया, ने उसको ये डर है कि मैंने अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगा, मैं अल्लाह ताला के आगे खड़ा होऊंगा तो फिर क्या जवाब दूंगा, मेरा हिसाब होना है। वो दिन जब हर एक नंगे पैर नंगे बदन होगा, आमाल लाए जाएंगे, आमाल पेश होने लगेंगे, मेरा नाम पुकारा जाएगा, मुझे बुलाया जाएगा, मुझे खड़ा किया जाएगा, उस दिन मैं क्या जवाब दूंगा? ये चीज उसको कपकपा देती है, ये चीज उसको परेशान रखती है, ये चीज उसको उठा देती है रातों को। अल्लाह ताला को वो बंदा बड़ा पसंद है ना, बड़ी अल्लाह ताला को उसे मोहब्बत है। तीन तरह के लोगों में से उनमें एक वो भी है जिसकी बीवी खूबसूरत है, उसका बिस्तर नरम है, लेकिन वो फिर भी उठता है, अल्लाह के आगे खड़ा हो जाता है। इसी तरह वो इंसान के जो सफर करके आया है, सफर में थका हुआ है, चलता रहा है, और फिर पड़ाव डाला जाता है, सब सो जाते हैं और वो अल्लाह के हजूर खड़ा हो जाता है। तो वो ऐसे लोग जो डरते हैं अल्लाह के आगे खड़े होने से, वो यही तैयारी करते हैं। वनहा नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को हवा से, ख्वाहिशात से रोकते हैं। रोकने से मतलब क्या? ये नहीं कि को भी खाना नहीं खाएंगे क्योंकि ये मैंने ख्वाहिश पूरी हो गई, कभी घर नहीं बनाएंगे ख्वाहिश पूरी, मैंने अपनी हवा नहीं पूरी करनी, नहीं, बल्कि अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, लिमिट्स में रखते हैं, लिमिट्स क्रॉस नहीं करते ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। देखिए, ख्वाहिशात नफ्स क्या होती है, हवा क्या है, ख्वाहिशात नफ्स क्या होती है कि नफ्स के अंदर जो उठने वाली ख्वाहिशात, जिसकी इंसान बस हर कीमत पे तकमील चाहता है कि हराम है, हलाल है, मुझे परवाह नहीं है, अंदर से नफ्स प्रेशराइज करता है, जोर लगाता है कि मेरी मांग पूरी करो। जैसे बच्चे जिद करते हैं ना, इस तरह नफ्स भी जिद पे आ जाता है और इंसान को मजबूर करने लगता है कि तुम ये करो, या तुम ये कहो, या तुम ये खाओ, या तुम ये यहां जाओ, या तुम काम करो। ये नफ्स ख्वाहिश करता है, मुझे ये चीज चाहिए, ये ख्वाहिश करता है। अब एक तो ये चीज उसे इतनी किया कि इंसान उसके आगे हार जाए, और बस दिन रात जो ख्याल आता आ रहे थे, मैं तो सोती भी थी तो मुझे यही ख्याल आता था कि वो चीज मैंने खरीदनी है, या वो खाना खाना है, या वो ऐसे करना। जब इंसान इसके आगे हथियार डाल दे, तो फिर ये नफ्स उसके ऊपर काबू पा लेता है, हावी हो जाता है। फिर उसका एक ख्वाहिश थोड़ी रहती है, एक ख्वाहिश हुई, उसके बाद दूसरी, दूसरी आई, फिर तीसरी, तीसरी आई, फिर चौथी, कभी ख़त्म नहीं होती ख्वाहिशात। ये ख्वाहिशात को कहा जाता है ऐसे जैसे ख़ारिश है, जिसको ख़ारिश का मर्ज़ लग जाए वो फिर कभी चैन नहीं पाता, वो एक जगह खारिज करता दूसरी जगह शुरू होती, जितनी खारिज करता उतनी ज्यादा होती। ख्वाहिशात भी ऐसे हैं, ख्वाहिशात एक सर उठाती है ना, इंसान कहता बस ये मेरी पूरी हो जाए ना, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो ही वो पूरी होती फिर एक दूसरी ख्वाहिश पॉप अप कर जाती। जरा देर की इसकी लज्जत थी जो पहली ख्वाहिश पूरी, जरा देर की, उसके बाद फिर अब कुछ और चीज चाहिए मुझे, अब फिर और तीसरी कोई चीज़ चाहिए। नफ्स एक जिद्दी बच्चे की तरह अंदर डिमांड्स करता रहता है, अगर इंसान इसको डिसिप्लिन ना करे। इसको डिसिप्लिन करना होता है, इस पे काबू पाना होता है, इसको कंट्रोल करना होता है। शैतान तो बाहर का दुश्मन है ही, एक अंदर भी दुश्मन बैठा है, तो किसी बात नहीं चैन लेने देता। तो जिसने अपने नफ्स पे काबू पा लिया, इसको सुधा लिया, इसको टेम कर लिया, इसको ऐसे जैसे आप देखते हैं वो सर्कस वगैरह में शेरों को और हाथियों को कैसे उन्होंने टेम किया होता है, कैसे वो उनके एक इशारे पे बैठते हैं, उठते हैं, हालांकि वो खून खार है, दरिंदा है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है उसको। उसने इस तरह से उसको सुधा लिया, जिसको कहते हैं अगर हम अपने नफ्स को सुधा लें कि नहीं, अब तुम मेरा मानोगे, अपनी ये ख्वाहिशात बंद करो, और उसको भी पता होगा कि अब ये मेरी ख्वाहिश नहीं पूरी करता। आपने उसको कुचल दिया, आपने उसको ऐसा कर दिया कि अब वो, आप ने सुधा लिया जिसको कहें, कि अब आपने उसको ये सिखा दिया कि क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना। जैसे सवारी की बागे हैं ना, आप खींच के रखेंगे तो ही सलामत है, और अगर आपने खींच के ना रखा और छोड़ दिया, तो सवारी आपको जिधर मर्जी गिराएगी, जिधर मर्जी लेके उड़ जाएगी। नफ्स की भी बागें खींचना पड़ता है कि नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये अल्लाह की नाफरमानी है। जब आप कॉन्स्टेंटली ऐसे करते रहेंगे ना, तो फिर आपका नफ्स को आपने सुधा लिया, फिर आपने उसको इस तरह बना दिया कि अब वो नाजायज ख्वाहिशात के ऊपर सर नहीं उठाता। खतरनाक, फिर भी उस शेर की तरह। किसी वक्त भी हमला कर सकता है, लेकिन सुधाया हुआ है ना तो फिर भी आप सलामत हैं। तो इसलिए नफ्स की हर ख्वाहिश पूरी नहीं करनी चाहिए। जो दिल में आया बस, अब मेरा रात को चाहे 1 बजे मेरे ध्यान में आ गया मैंने ये चीज खानी है, उठ के चल पड़े खाने के लिए, मैंने बस ये पहनना है बस पहन। यानी हर ख्वाहिश जो आपके दिमाग में आ जाती है उसको अगर आप पूरा करने के लिए चल पड़ते हैं तो आप अपने नफ्स को मोटा कर रहे हैं, फिर ये नफ्स आपसे नाजायज डिमांड करता है। तो इसलिए हम देखें हमारे नफ्स को हमने कंट्रोल करना है, ना कि उसको ये कंट्रोल में अपने आप को दे देना, ठीक है। तो जो अपने नफ्स को कंट्रोल करता है, अब दूसरी तरफ को भी ना समझ लें जो मैंने अभी आपको मेंशन किया कि अब नफ्स को खत्म करने की रियाजतें शुरू कर दें कि बस मैंने खाना भी नहीं खाना, कभी गोश्त नहीं खाना, बस सब्जी, कब फटे पुराने कपड़े पहने रखने हैं, सफेद जोड़ा एक पहन लिया बस उसी को धो धो के बस पहनते रहे, हालांकि मेरे पास और हैं और मेरे पास सकत भी है पहनने की और मैं अफोर्ड भी कर सकती हूँ, हलाल के साथ कर सकती हूँ, लेकिन बस मैं अपने नफ्स को ख़त्म कर रही हूँ, ये नहीं दरकार है, ये मतलूब नहीं है, समझना चाहिए। क्योंकि बाज़ लोग एक और एक्सट्रीम पे निकल जाते हैं और वो सोचते हैं कि जो जो बस कुछ ना खाए ना अच्छा पहने ना कुछ, अब बस वो है जो कामयाब है। अल्लाह ताला ने तो ये दुनिया की जीनतें भी मोमिन के लिए ही बनाई हैं, जैसे सूरह अनाम में अल्लाह ताला ने फरमाया। तो फिर ये नहीं मना किया गया कि जायज़ को भी हराम कर लो, लेकिन जायज़ भी एक लिमिट में होना चाहिए, और हराम तो है ही हराम, उसको तो कभी भी नहीं मानना, लेकिन जायज़ को भी लिमिट में रखो, जायज़ के लिए भी आप से बाहर ना निकल जाओ कि नफ्स अभी बोलता नहीं हम उसकी डिमांड पहले पूरी कर देते। और नफ्स का तो आपको पता है ना, सू की तरफ इंसान को दावत देता है, बुराई की तरफ, 13वां पारा शुरू ही इससे हो रहा है। तो वो जो नफ्से अम्मारा है उसको कंट्रोल कर लिया, फइन्नल जन्नत हियल मावा, तो जन्नत उसका ठिकाना है। अभी जब इसका नफ्स नफ्से मुतमईना बन गया तो अब जन्नत इसका ठिकाना बन गई। और देख ले इसका मतलब है कि जन्नत ख्वाहिशात को पूरी करने से तो नहीं मिलती, कि बस ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश अब आराम करने की है, मेरी ख्वाहिश अब वह सैरो तफरी की है, मेरी ख्वाहिश यही है बस कि मैं कोई मेहनत ना करूँ। नफ्स मेहनत करना नहीं मांगता, वो कहता है मेहनत करने की क्या जरूरत है, बस आराम करते रहो, पड़े रहो, ये कुछ सारी छोड़ो चीज़ें, इन चीज़ों पर ध्यान ना दो। तो देखिए नफ्स इंसान को आराम तलबी की तरफ, खाओ पियो मजा करो इस तरफ लेके जाता है, सो जाओ उठ जाओ खा लो पी लो फिर सो जाओ, बस ये यही जिंदगी। अगर इंसान इसके पीछे चल पड़ा तो फिर वो जन्नत तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जन्नत तक पहुंचने के लिए क्या जरूरत है, नफ्स का कंट्रोल। और नफ्स का कंट्रोल किस तरह आएगा, कि आप अपने नफ्स की हर जायज नाजायज को पूरी नहीं करेंगे। और नफ्स का क्या चीज डिमांड करता है, नफ्स आराम तलबी चाहता है, वो मेहनत नहीं करना चाहता। जब इंसान उन चीजों को करने लगता है जो नफ्स के ऊपर भारी होती हैं, तो वही जन्नत का रास्ता है। जैसे कि आपको पता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जन्नत को देखा और जन्नत की नेमतों को अल्लाह ताला ने फरमाया जाओ जाके देख के आओ, नेमतों को भी देखा जो अहले जन्नत के लिए बनाई गई। वापिस आए तो अल्लाह ताला ने पूछा कि कैसी तुम्हें जन्नत लगी, फरमाया मेरे रब तेरी इज्जत की कसम जो भी जन्नत के मुतल्लिक सुनेगा वो जरूर इसमें दाखिल हो जाएगा, ये तो इतनी खूबसूरत जगह। लेकिन फिर जन्नत को मुशक्कतों की चीजों से ढांप दिया गया, फिर अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया जाओ जन्नत को देखो। जब वो गए उन्होंने जाके देखा तो वो ढकी हुई थी, वो घेरी हुई थी ऐसी चीजों से जो नफ्स को गरां गुजरती हैं, वो नफ्स को मुश्किल लगती हैं, नफ्स नहीं करना चाहता। तो फरमाया आके मेरे रब तेरी इज्जत की कसम मुझे तो डर है कि अब कोई भी इसमें दाखिल नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया जहन्नम को जाके देखो, वो जहन्नम को देख के आए, अल्लाह ताला ने पूछा उनसे फरमाया तेरी इज्जत की कसम जो जहन्नम के मुतालिक सुनेगा उसमें कभी दाखिल नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला ने जहन्नम को शहवात से ढांक दी, यानी जो नफ्स को बड़ी अच्छी लगती हैं, तन आसानी की चीजें, मजेदार चीजें, ऐसी चीजें जो बस नफ्स बस उन्हीं के अंदर लगा रहना चाहता है, वो उनसे ढांप दी गई जहन्नुम। तो फिर अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि अब देखो, तो देखा उन्होंने फरमाया तेरी इज्जत की कसम मुझे तो डर है कि कोई भी इसमें दाखिल हुए बगैर रह ही नहीं सके, क्योंकि इतनी टेम्पटेशंस, इतनी इससे मैं ख्वाहिशात को पूरी करना, जो मजे की मजे करना, बस दुनिया को बेफिक्री से गुजारना, बस इसी के अंदर अपने आप को हर वक्त इंडल्ज रखना, ये नफ्स को पसंद आती हैं चीजें। तो जो चीजें पसंद आनी है नफ्स को, वो तो जहन्नुम का रास्ता है, जन्नत का नहीं है। अल्लाह अकबर। यस अलून का अनिसाती अय्याना मुरसाहा, वो आपसे सवाल करते हैं कयामत के बारे में, कब आएगी कयामत। फी मानता दिन मिन जिक्रा, ए नबी आप कह दीजिए कि मुझे इससे क्या कि कयामत क्या आएगी, कब आएगी। बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी आप को कयामत से क्या, यानी आपका इससे क्या काम कि आप ये बताएं, आपका इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए कि आपका काम ये था कि कयामत के दिन की खबर दे दें, ये काम नहीं था आपका कि कयामत का पता बताएं कि कौन से टाइम पे किस डेट को आनी है। ये ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म दिया गया, ना आपके पास था। तो फीमा अंता मिन जिक्रा, आपका क्या ताल्लुक है इससे कि आप बताएं, जो ये आप उसे सवाल कर रहे हैं, ये आपसे जो डिमांड कर रहे हैं कि आप इसका पता बताइए। इला रब्बी का मुंतहा, तेरे रब की तरफ इसकी इंतहा है, यानी इसका इल्म तेरे रब के पास है, वो सिर्फ जानता है। इन्नमा अंता मुनजिरु मन यख्शाहा, बेशक ये तो खबरदार, बेशक तू तो खबरदार करने वाला है उसको जो डरता है, इससे किससे, कयामत के दिन से। आपका काम है इंतजार कर देना, आपका काम है इनको वॉर्न कर देना, और इनका काम क्या है, बस ये पूछते रहना कि कब आए। अच्छा, निशानी पूरी हुई कि नहीं। देखिए सहाबा कराम का तर्ज अमल ये था, वो इतनी जल्दी डर जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये बादलों को देखते थे, आंधियों को देखते थे, सहाबा कराम भी इसी तरह इतना डरते थे कयामत के दिन से कि उनको जरा सा कुछ मामला बिगड़ता था तो वो सोचते थे कि कहीं कयामत तो नहीं आ रही। वो ये नहीं सोचते थे अच्छा उसकी तो अभी निशानियां पूरी ही नहीं हुई और अभी तो इतना टाइम बचा हुआ है और अभी तो ऐसे है, तो इसके पीछे ना पड़े कि कयामत कब आएगी। अच्छा भाई वो इसकी निशानी ये वाली पूरी हुई कि नहीं, ये वाली पूरी हुई, ओ अच्छा अभी पूरी नहीं हुई तो लिहाजा मैं अभी रिलैक्स करूं, जब पूरी हो जाएंगी तो फिर मैं उठ के कोई काम कर लूंगी। नहीं, इसलिए क्योंकि सहाबा कराम अपनी जिंदगी में अपनी तैयारी पूरी करके इस दुनिया से गए, अब कयामत चाहे 10,000 साल बाद आए चाहे 1 लाख साल बाद आए, उन्होंने अपना अमल मुकम्मल कर लिया। हमारे लिए हमारी कयामत शुरू हो जानी है जिस वक्त हमारी मौत आनी है, हमारा नामा अमल बंद हो जाना है, उसके बाद हमारी बला से कयामत आ जाती है या कल आती है, हमें क्या है इससे। अक्सर लोग बस सिर्फ यही सवाल करते रहते हैं कि बस कयामत कब आएगी, बस उसकी निशानियां बताएं, अच्छा ये वो यही गिनते रहते हैं, उनको इस चीज की फिक्र नहीं है कि हमने कोशिश क्या की भी है, क्या जमा किया हुआ। तो आप तो इंतजार करना आपका सिर्फ काम है, इनको मैसेज पहुंचा देना, इनको बता देना। फिर कहा गया उस दिन कयामत के दिन क्या होगा, का अन्नहुम यौम यरौनहा लम यलबसू इल्ला आशियतन औ दुहाहा, जिस दिन वो इसको देख लेंगे ना कयामत को, तो फिर उनका हाल क्या होगा। अल्लाह अकबर, उनका हाल ये होगा कि वो ये सोचेंगे कि वो नहीं ठहरे मगर इल्ला आशियतन औ दुहाहा, मगर शाम का वक्त या सुबह की घड़ी। बाज ने आशिया का माना ये लिया है कि जब से सूरज गरूब होने लगता है उस वक्त से जब पूरा गरूब हो जाए, तो 10-12 मिनट। बाज ने लिया है कि सूरज जब जवाल की तरफ चल पड़े उस वक्त से लेकर मगरिब तक का, वो भी चंद घंटे हो गए। दोहा का भी इसी तरह लिया गया है कि सुबह से लेके बाज ने लिया के जवाल तक, और बाज ने लिया के नहीं सुबह से लेके उस वक्त जब सूरज पूरा ऊपर आ जाता है। यानी कहने का मकसद ये कि बहुत ही कम टाइम, बहुत ही कलील वक्त जो इंसान जब गुजारता है, तो आज आप एक बूढ़े से भी पूछ लें वो भी यही कहता है, पलक झपकने में गुजर गया, कल तो अभी मैं बच्ची थी, कल तो अभी मैं जवान थी, कल तो अभी मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, आज बच्चों के भी बच्चे हो गए, पता भी नहीं चला जिंदगी कहाँ चली गई। तो एक सुबह और एक शाम फील होगी। अब इसी से हमें ये लेसन लेना चाहिए कि क्या ये वर्थ है कि एक सुबह और एक शाम, इतना सा सिर्फ टाइम, चाहे सुबह का ले ले आओ है या शाम का, पूरे दिन का भी नहीं उन्होंने कहा कि पूरा एक दिन हम गुजार के आए, नहीं, दिन का कुछ हिस्सा है ये, चाहे चंद मिनट चाहे चंद घंटे, कुछ हिस्सा, और वो कितनी जल्दी गुजर जाता है। और वाकई ये पूरी जिंदगी भी इतनी ही जल्दी गुजर जाती है। फिर आप सोचते हैं कि कहाँ चली गई जिंदगी, तुझे इस जिंदगी ढूंढ के लाऊं कहाँ से, फिर इंसान ये सोचता है किधर गई। और फिर इस जिंदगी के लिए वर्थ है नाफरमानी करना, क्या फिर बहुत फायदे का सौदा नहीं है उन लोगों का जो इस जिंदगी में कुछ बना जाते और जन्नत पा लेते। थोड़ी सी जिंदगी में थोड़ी सी कोशिश होगी ना, कितनी कोशिश कर लेंगे, कितनी कर लेंगे, 60 70 80 साल की कोशिश और हमेशा की जिंदगी, हमेशा की। देखिए वहां की जो जिंदगी है और उसकी जो नेमतें हैं और जो वहाँ के इनामात हैं, उनका इंसान इन दुनिया की चीज़ों से ना कंपैरिजन ही नहीं कर सकता। जो कुछ वहाँ मिलेगा उसका शौक लगाने की ज़रूरत है, जब उसका शौक लग जाता है तो ये शौक फिर कम होने लगते। इसी तरह दुनिया के जो खौफ है ना, इनके खौफ तो कुछ भी नहीं जो यहाँ के हैं, जो वहां की बड़ी बला है, जो वो बुरी चीज है जहन्नुम, जब उसका खौफ आ जाता है ना, फिर यहां के डर भी दिल से रुखसत होने लगते हैं। तो इंसान अगर इस दुनिया में अल्लाह से डर के रहे, दो चीजें हैं ना, अल्लाह ताला का डर भी इंसान को बहुत बड़ी एक अल्लाह ताला की नेमत है कि अगर किसी के दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए, किसी के दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए कि मैं अल्लाह ताला के आगे कैसे खड़ा हूं। अगर इंसान यही सोच लेना कि देखो वहां पे या तो जन्नत है या जहन्नुम है, तीसरा कोई ठिकाना नहीं है, जहन्नुम तो कोई मेरे लिए कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक जहन्नुम में कम से कम अजाब भी उसको होगा जिसको आपकी दो जूतियां और दो तस्मे पहनाए जाएंगे और उसका दिमाग उससे खोल रहा होगा, पहने पाँव में है लेकिन खोल दिमाग रहा है, बॉयल हो रहा होगा दिमाग, जिस तरह चूल्हे पे रखी हुई देच की खोलती है। और वो इंसान सोचेगा कि सबसे ज्यादा अजाब में मैं हूं, मेरे से ज्यादा तो कोई बड़ी मुसीबत में है ही नहीं, ये उसकी हालत होगी। तो जहन्नुम इज नो ऑप्शन, वहां का हल्का तरीन अजाब भी नो ऑप्शन, तो फिर करना क्या है? क्या दुनिया की जिंदगी कोई तरजीह देनी है या आखरत को तरजीह देनी है? क्या अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारनी है कि उसके सामने खड़े होना, और ये भी डर पैदा करने की जरूरत होती है, ऐसे खुद ही नहीं आ जाएगा, इसके लिए भी इल्म लेना जरूरी है, पता होना चाहिए अल्लाह ताला के आगे खड़े होना क्या होता है, वहां पे क्या होगा। अगर इंसान के अंदर वहां पे खड़े होने का डर नहीं तो परवाह भी नहीं करेगा फिर, वो क्या खा रहा हूं, क्या पी रहा हूं, कैसे रह रहा हूं, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वहां पे तो मैं छूट ही जाऊंगा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बात बताई थी कि आखरत का इनकार सिर्फ ये नहीं है कि इंसान कहे कि मैं आखरत को नहीं मानता, इंसान ये कहता ना मैं वहां पे, मेरे लिए जिसको कहते हैं सत्ते खैरा, मैं वहां पे मुझे कुछ नहीं होना, मैं बिल्कुल अमनो अमान से गुजर जाऊंगा, मैं तो जन्नत में ही जाने वाला हूँ, तो वो भी कयामत का इनकार करने के बराबर ही है। लिहाजा ये डर होना चाहिए। क्यों सहाबा कराम डरते थे, क्यों वो हमारे असलाफ क्यों इतना रोते थे, क्यों उनको नहीं पता था क्या कि वहां पे तो जन्नत है और हमने तो जाके बच जाना है, हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या उनको नहीं ये बात पता थी? क्यों वो कांपते थे इससे, क्यों उनके होश उड़े रहते थे इससे, क्यों वो रोते थे इसको याद करके? अबू हुरैरा सबसे ज्यादा हदीस उनसे नरेट हुई, और मौत का वक्त आया है तो रोने लगे, लोगों ने पूछा अबू हुरैरा क्या दुनिया छोड़ने की वजह से रो रहे, नहीं, कहते नहीं, लेकिन मुझे ये है कि रास्ता तो बहुत लंबा है और मेरे पास सामान तो कुछ भी नहीं, इस वजह से रो रहा हूं। मैंने ऐसे टीले पे शाम किया, मुझे नहीं पता आगे जन्नत है या जहन्नम, मुझे नहीं पता मेरी मंजिल कौन सी है। उनको डर था अल्लाह के आगे खड़े होने का, उनको ये था कि सफर लंबा है, कितना कुछ है सफर में आगे, कहीं कब्र है, कहीं आगे हशर का मैदान है, कहीं पुल सिरात है, कहीं मीजान है, कैसे ये सफर तय होगा, और मेरे पास सामान तो बहुत थोड़ा है, मुझे तो नहीं पता मेरे साथ क्या होना है। तो गारंटी किसके पास है, फिर भी हम सोचते नहीं, फिर भी हमें डर नहीं आता, फिर भी हम रोते नहीं, फिर भी हमारे आंसू क्यों नहीं निकलते, ये सोच के कि अल्लाह तेरे आगे खड़े होना कैसा होगा। अल्लाह ताला इस दिन की तैयारी करने की हमें तौफीक अता फरमाए, इस दिन को हमारे लिए आसान फरमाए। अब वो जो सवालात मैंने आपको कहा, हर सूरत के बाद मैं आपको सवालात दूंगी कि आपने ये अपने आप से पूछने हैं, और वो अपने लिए हैं सिर्फ, किसी और को दिखाने के लिए। वन्ना ज़ियादे वर्का और वन्ना अशतौत ही नश्तौ। अब इन दोनों के अंदर से हमने देखना है कि हमारी रूह हम किस तरह से चाहते हैं कि खींची जाए, आसानी के साथ या मुश्किल के साथ। अगर हम चाहते हैं आसानी के साथ, तो क्या मैं उसके लिए दुआएं करती हूँ, क्या मैं उसकी ख्याल सोचती हूँ, मेरे सोच में आता है दिन भर में कि अल्लाह मेरे खात्मा बिल खैर, वो मेरी मौत का वक्त आसान हो जाए और मेरे लिए जन्नत के फरिश्ते आएं और मेरे लिए इस तरह के कफन लेकर आएं और रोशन चेहरे वाले मेरे लिए आएं। कितनी दफा मुझे इसका ख्याल आता है, ये अपने आप से सवाल करें। दूसरे, क्या मैं सबकत ले जाने वालों में से हूं, या फिर मैं बस चल रहा है गुजारा, चल रहा है गुजारा ही चलाना है उस तक हूं, ये अपने आप से पूछें। क्या सबकत ले जाने वाले उस दिन भी आगे आगे होंगे, साबे खून होंगे। इसी तरह क्या मुझे इस चीज का डर होता है कि जब मैं दोबारा खड़ी होंगी तो मेरी क्या हालत होगी, इसके बारे में मैं सोचती हूं। फिर तुगयानी का जरूर सोचना है हमने, ये मैं कहाँ कहाँ लिमिट्स को क्रॉस कर रही हूं, अपने पहनने में, अपने बनने संवरने में, अपनी जॉब में, अपने लोगों के साथ मामलात करने में, अपने रिश्तेदारों के साथ, मैं किधर लिमिट्स क्रॉस करती हूं, कहाँ पे मुझे पता है कि ये हद है मेरी लेकिन मैं उसको पार कर जाती हूं, शौहर के साथ, वालदेन के साथ, या औलाद के मामले में, या जो भी जिसके पर भी मेरा बस चलता है उसके मामले में मैं हद क्रॉस कर रही हूं। हकूक ना देना भी हद क्रॉस करना है। फिर मैं मुझे अपना तस्किया करना है, तस्किए का अमल मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, गुनाहों को, गंदगियों को निकालना है उसी तरह जैसे वीड्स निकाले जाते हैं, और नेकियों को प्लांट करना। फिर आगे आ जाए तो आसर अल हयात दुनिया पे बहुत गौर करें कि मेरी जिंदगी में तरजीहात क्या हैं, जब एक तरफ नमाज हो, एक तरफ काम हो, एक तरफ अल्लाह ताला के दीन के कोई काम हो और दूसरी तरफ दुनिया के कोई काम हो, एक तरफ अल्लाह का हुक्म हो और एक तरफ मेरी मर्जी हो, एक तरफ आखरत की कोई चीज हो जो आखरत में काम आ जाने वाली है और एक तरफ दुनिया की कोई चीज हो, मेरी पसंद क्या होती है, मेरी प्रेफरेंस किसकी चीज के लिए होती है, मैं किस तरफ मिलान रखती हूं, दुनिया ही मेरा मतमा नजर है या आखरत। फिर मैं हर रात सोचती हूं मैंने अल्लाह ताला के आगे खड़े होना, और जब सोचती हूं तो मुझे क्या फील होता है, उसका सामना करने से मैं शर्मिंदा होंगी, मुझे उससे मुलाकात का शौक होगा, मेरी रूह जब निकलेगी तो उससे मुलाकात के शौक में तेजी से निकलेगी, या मुझे डर होगा कि ओहो मैंने कुछ नहीं किया, अंदर छुपेगी। किस तरह से होगा मेरा मामला? आज मेरी मौत आ जाती तो मुझे क्या लगता है ये, वो उसको महबूब क्या चीज है मेरी रूह को? मैंने इतना कर लिया है, मैंने अब निकलना है जल्दी, या मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, मैंने अभी नहीं जाना? और मैं अपने नफ्स की ख्वाहिशात कितनी पूरी करती हूँ, कोई लिमिट्स भी है या अनलिमिटेड? ये सवालात आप अपने आप से पूछिएगा, इनके जवाब आसान है, क्योंकि अपना मुहासबा आज कर लेंगे तो बहुत फायदा है, और अपने आप से सच बोल लेंगे तो किसी को दिखाना नहीं है, अपने आप से सच बोलना है बस। अल्लाह ताला इसकी तौफीक हमें अता फरमाए। तिलावत सुनिए।
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.